फ्लैशबैक। कर ली तुमने अपनी मनमानी, यही चाहिए था ना तुम्हें। पता भी है कि तुम्हारे वजह से क्या हुआ है। मिस्टर रायचंद के शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें गुस्सा साफ झलक रहा था और उनके शब्द कायरव के कानों में चुभ रहे थे। कायरव ने हल्का भौंए से गोड़ दी। उसके एक्सप्रेशन साफ जाहिर कर रहे थे कि उनकी हर बार की सेम बातों और एक्सपेक्टेशन से अब वो थक चुका है। कितनी बार समझाया है तुम्हें, कुछ करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा करो, लेकिन नहीं, तुम्हें बस अपनी मनमानी करनी है। कायरव ने अब भी कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, यहां तक कि सर घुमाकर उन्हें देखना तक जरूरी नहीं समझा। मिस्टर रायचम ने गुस्से में जबड़े भींच लिए। सिंगिंग करोगे, रॉकस्टार बनोगे, फैमिली बिजनेस छोड़कर गाना गाओगे, यही सपना है तुम्हारा? आवाज में सार्कैज़म था और शब्दों में दिल में भरी कड़वाहट खुली थी। कायरव को लगा जैसे वार सीधे उसके दिल पर हुआ। घर भी छोड़ दिया था तुमने, बिना बताए, बिना सोचे, जैसे बहुत बड़े हो गए हो। अब तुम डिसीजन लोगे, लाइफ के बारे में जानने लगे हो। गुस्से में भड़के यशवर्धन जी ने फिर उसे घूरते हुए तंज कसा। बहुत बड़े और समझदार हो गए हो ना तुम, अब तुम्हें हमारी कोई जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद से ले सकते हो। लेकिन क्या इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी इसका अंजाम सोचा था? क्या करते, कहाँ जाते, कोई ठिकाना था तुम्हारा? उनके हर शब्द इतने तीखे थे कि कायरव के कॉन्फिडेंस को तोड़ते जा रहे थे। आज तक तुमने अपने दम पर किया क्या है? तुम्हें जो मिला है सब हमने दिया है। दुनिया तुम्हें जानती है तो यशवर्धन रायचंद के बेटे के रूप में, उसके अलावा तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है। आज तक कभी कुछ मांगना नहीं पड़ा तुम्हें, कभी किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं किया। अभी असली जिंदगी देखी ही नहीं है तुमने, इसीलिए तुम्हें सब कुछ इतना ईजी लगता है। क्या लगा था तुम्हें, क्या सोचकर तुमने ये बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया था? क्या सोचा था तुमने, घर छोड़ोगे और सब अपने मन मुताबिक कर लोगे, इंडस्ट्री में सर्वाइव कर लोगे? कायरव अब भावहीन सा यशवर्धन जी को देखने लगा, जिनकी बातों में ना भरोसा था ना चिंता फिक्र, कुछ था तो बस ताने और इंसल्ट। बिना पैसे, बिना कनेक्शन, बिना नाम, कोई तुमसे बात करना तो दूर, पूछेगा भी नहीं, अपनी ज़रूरतें तक पूरी नहीं कर पाओगे, जिंदगी भर बस स्ट्रगल ही करते रह जाओगे। इन सब में सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करोगे, हमारा नाम, हमारी लेगेसी, हमारा सम्मान सबको मिट्टी में मिलाओगे, बस एक चाइल्डिश ड्रीम के पीछे। डैड, आप जिसे एक चाइल्डिश ड्रीम कह रहे हैं, वो मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरे दिल का सुकून है। इतनी देर से कायरव चुप सा सब सुन रहा था, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नया नहीं था। यशवर्धन जी से उसे यही एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन अपने सपने को बेवकूफ़ी, चाइल्डिश ड्रीम कहना वो बर्दाश्त नहीं कर सका। आवाज़ उसकी अब भी धीमी थी, लेकिन लहजे में दृढ़ता, आंखों में मौन शिकायत झनक रही थी। पर यशवर्धन जी को कुछ नज़र न आया, वो जबड़े भींचते हुए चीखे, मेरी नज़रों में ये एक चाइल्डिश ड्रीम ही है, जिसके पीछे तुम अब तक अपना इतना टाइम बर्बाद कर चुके हो और आज इस हालत में यहाँ पड़े हो। जानते भी हो तुम, तुम्हारी इज्जत की वजह से क्या हुआ है, तुम्हारे सिंगर बनने के सपने की वजह से हमने क्या खोया है। तुम तो घर छोड़कर चले गए थे क्योंकि तुम्हें लगा तुम फैमिली से बड़े हो, लेकिन जानना चाहते हो तुम्हारी जिद का असर किस पर पड़ा? वो एक सेकंड रुके। कायरव ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा फेर लिया, जैसे उनकी बातों को सुनने में अब उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं। लेकिन अगले ही पल यशवर्धन जी ने जो कहा उसने उसके होश उड़ा दिए। तुम्हारी दादी आईसीयू में है। कायरव को झटका सा लगा, वो फौरन पलटा और अविश्वास भरी नज़रों से उन्हें देखने लगा। बोलना चाहा लेकिन शब्द जैसे बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तुम्हारे वजह से मेरी माँ आईसीयू में एडमिट है। तुमने तो घर छोड़ने से पहले एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा, ये जानते हुए कि तुम्हारी दादी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम अपनी जिद में उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन जब उन्हें तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो ये शौक बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसी टाइम उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इस वक्त भी वो आईसीयू में है, कंडीशन स्टेबल है, लेकिन अभी भी वो ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस देने से मना किया है, वरना कुछ भी हो सकता है, और इन सब के जिम्मेदार तुम ही। अपनी एक बेवकूफ़ी से तुमने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी दादी की जान भी खतरे में डाल दी। तुम्हारा सपना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि तुमने उसके लिए उस दादी के प्यार को ठुकरा दिया जिसने तुम्हें अपने पोते नहीं बेटे जैसे पाला। यशवर्धन जी के तीखे शब्द सीधे कायरव के दिल पर जाकर लगे, उसका गला भर आया और आंखों में नमी उतर आई। दिल गिल्ट से भर गया, दादी उसकी कमजोरी थी, यशवर्धन जी ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर उसकी उसी कमजोरी पर वार किया था, और उनका हर शब्द जैसे उसे गिल्ट और दुख के गहरे समुद्र में डुबोता जा रहा था। यशवर्धन जी रुके, उन्होंने गौर से कायरव को देखा, अब वो पूरी तरह से टूट गया था और यही वो वक्त था जिसका उन्हें इंतजार था। अगर तुम अपने उस बेकार की जिद में घर छोड़कर नहीं गए होते तो उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होता और आज तुम्हारी दादी आईसीयू में नहीं होती। अभी तो वो खतरे से बाहर है, इस बार तो हम टाइम पर उन्हें हॉस्पिटल ले आए, बचा लिया उन्हें। लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो शायद तुम अपनी दादी को भी हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। क्या यही चाहते हो तुम? उनका ये आखिरी का सवाल कायरव के कानों में गूंजने लगा। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं सका, वो तो जैसे अपने होश में ही नहीं था। मिस्टर रायचंद ने गहरी सांस छोड़ी और अब थोड़े शांत लहजे में बोले, कायरव मैं बाप हूं तुम्हारा, कोई दुश्मन नहीं। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं उतना एक्सपीरियंस रखता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारे सपनों के खिलाफ हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं जो भी करता हूं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए करता हूं। तुम कोई आम लड़के नहीं, यशवर्धन रायचंद के बेटे हो, हमारी इकलौती औलाद, रायचंद खानदान के वारिस हो, रायचंद एम्पायर का फ्यूचर हो तुम। तुम्हें बिजनेस संभालना है, हमारे खानदान की लेगेसी, उस कंपनी में काम करने वाले लाखों करोड़ों लोगों का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे दादा की भी यही इच्छा थी कि जिस कंपनी की नींव उन्होंने रखी उसे उनका पोता आगे बढ़ाए। ये सिंगिंग ये पैशन नहीं डिस्ट्रैक्शन है, जो तुम्हें तुम्हारे लाइफ के गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर कर रही है, जिसकी वजह से आज तुम यहाँ इस हालत में हो और वहां तुम्हारी दादी आईसीयू में है। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार, तुम्हारी दादी की जान, हमारे परिवार की इज्जत, तुम्हारे दादा की इच्छा, उन लाखों करोड़ों लोगों का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है या तुम्हारा सपना? बस याद रहे, जो भी फैसला लोगे वो तुम्हारा आखिरी फैसला होगा। अगर तुमने अपने सपने को चुना तो हम तुमसे सभी रिश्ते खत्म कर देंगे। तुम्हारी दादी को अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। और अगर तुमने अपने परिवार को चुना तो अपने इस शौक को छोड़कर अपना पूरा ध्यान अपनी स्टडीज और बिजनेस पर लगाना होगा। रूम में अजीब सा सन्नाटा पसरा था, अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। कायरव की आंखें आज फिर नम थी, चेहरे पर वही दर्द, बेबसी, मायूसी, सपनों के टूटने का दर्द और डर किसी अपने को खोने का, आंखों में वो गिल्ट जो यशवर्धन जी ने उसके मन में भरा था। उसके बगल में बैठी इनाया एक टक उसे देख रही थी, शायद अब उसे उसके सभी सवालों के जवाब मिल चुके थे। कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था, या शायद बहुत कुछ था जो अनकहा रह कर भी बयां हो गया था। इनाया ने उसकी हथेली को कसके थाम लिया और कायरव को उस वक्त की यादों से खींचकर बाहर ले आई। कायरव की आंखें जो शून्य में तक रही थी अब इनाया के चेहरे पर ठहर गईं। मैं घर छोड़कर इसीलिए नहीं गया था क्योंकि मेरे लिए मेरा सपना, मेरी फैमिली, मेरी दादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं गया था क्योंकि वहां मुझे कभी बिलोंग करने का एहसास नहीं हुआ, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि वो मेरी फैमिली है। उस घर में मुझे दादा दादी का प्यार मिला, लेकिन मॉम डैड के होते हुए मैं हमेशा उनके प्यार के लिए तरसता ही रहा।
मैंने वो घर छोड़ा क्योंकि हमेशा की तरह तब भी वहां मुझे वो करने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। कोई मुझे समझने के लिए तैयार नहीं था, किसी को मेरा टैलेंट नजर नहीं आ रहा था, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी खुशी किसमें है। टू बी कंटिन्यूड।